जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, रूप गोस्वामी महाराज की जय हो। तो हम सब लोग श्री वृंदावन के एक प्रमुख मंदिर में आए हैं, जिसका नाम है राधा दामोदर मंदिर। आप लोग में नोटबुक है कोई? नहीं है, मोबाइल में लिख सकते हैं। श्री वृंदावन के 7 मंदिर हैं मेन। मे भी हम लोग बरसाने की यात्रा में वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो 50 किलोमीटर दूर है वृंदावन से, बरसाने से। लेकिन वृंदावन वो जगह है जो 108 वन में से भगवान को 12 वन बहुत प्रिय हैं, और उन 12 वनों में से श्री वृंदावन सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। भगवान को लीला करने के लिए वृंदावन बहुत पसंद है। दूसरा नंबर का वन है काम्य वन, वो भी उनको बहुत पसंद है, उसको पति वृंदावन कहा गया है। वो काम्य वन जो है वो बरसाने से 25 किलोमीटर दूर है उत्तर की ओर। तो वृंदावन में सभी जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं वो सब लोग वृंदावन में तपस्या किया, वृंदावन में भजन किया उन्होंने। तो सबसे पहले मंदिर है राधा मदन मोहन जी का, आपको दिखाएंगे टाइम मिलेगा तो सबसे पहला मंदिर राधा मदन मोहन जी का। वो सनातन गोस्वामी, जिनके लिए उन्होंने मच्छर के देवता को बुलाया ना, वो सनातन गोस्वामी, उनका मंदिर राधा मदन मोहन जी। उसके बाद वाला मंदिर जो है राधा गोविंद जी, राधा गोविंद जी जो है वो रूप गोस्वामी का मंदिर है। तीसरा मंदिर राधा गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी मधु पंडित जी का मंदिर है। इसके बाद हम लोग जब भी गए थे श्याम सुंदर जी, राधा श्याम सुंदर, वो श्यामानंद गोस्वामी का मंदिर, जो हम कल शाम को गए थे। उसके बाद ये राधा दामोदर मंदिर, ये जीव गोस्वामी का मंदिर है। और इसके आगे एक मंदिर है 7वां मंदिर, जिसका नाम है राधा गोकुलानंद मंदिर, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का मंदिर है। ऐसे 7 आचार्यों का ये 7 मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं बहुत आचार्यों के। उसमें से कई मंदिरों के जितने विग्रह हैं भगवान के वो इस मंदिर में इकट्ठा किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना राधा वृंदावन चंद्र, जय राधा वृंदावन चंद्र, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी का मंदिर है, जो एक सखी के अवतार थे और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित्र लिखा है, चैतन्य चरितामृता। उसके लेखक का नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके विग्रह हैं वो। आप देखिए फोटो में, देखिए लास्ट में सबसे लंबे विग्रह है ना, लेफ्ट में नीचे जगन्नाथ जी हैं, ऊपर देखो खड़े लंबे हैं, वो लंबे विग्रह राधा वृंदावन चंद्र हैं। उसके बाद में बीच में देखिए आप, 2 छोटे और 1 बड़े विग्रह हैं। वो जो बड़े हैं विग्रह वो दामोदर जी हैं, और उसके दामोदर जी के राइट साइड में ललिता जी का विग्रह है, और दामोदर जी के लेफ्ट साइड में राधा रानी का विग्रह है। तो ललिता राधा दामोदर, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक विग्रह है, दिख रहे हैं छोटे से, लेकिन 2 है, 2 जोड़ी है, वो है राधा माधव, यानी कि जयदेव गोस्वामी हुए हैं जिन्होंने गीत गोविंद का लेखन किया है, गीत गोविंद, बहुत सुंदर और बहुत ही उच्च कोटि का शास्त्र है वो। राधा कृष्ण का प्रेम का उसमें सुंदर वर्णन किया है गीत गोविंद, बहुत फेमस है वो, जैसे कि PhD स्टफ है वो, इट्स अ वेरी हाई लेवल स्क्रिप्चर। उसका लेखन जिन्होंने किया है जयदेव गोस्वामी, उनका विग्रह उनके बाजू में है, राधा माधव जी। उसके बाजू में देखो और एक विग्रह है, दिख रहे हैं आपको, राधा और कृष्ण के, उनका नाम है राधा छैल चिकन। उसका अर्थ यह है कि जो छलिया है, जो गोपियों को छलता है, नाम है छैल चिकन। वो भूगर्भ गोस्वामी नाम के गोस्वामी हुए हैं, उनके विग्रह हैं राधा छैल चिकन। उसके बाद नीचे मैंने बोला राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, जय राधा गिरिधारी, नीचे एक फोटो है, उसको बहुत मालाएं पहना के रखी है ना, वो गोवर्धन की शिला है, स्टोन गोवर्धन का, उसको गिरिराज शिला कहते हैं, उसकी भी कहानी बताऊंगा आपको। उसके बाजू में जो फोटोग्राफ है वो रूप गोस्वामी है, जो हमारे संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य हैं, आज से 500 साल पहले हुए हैं, तो वो भी रूप गोस्वामी का विग्रह है, ये भी रूप गोस्वामी का विग्रह है। और ये राधा दामोदर का मंदिर है, और ये दो रूम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूम है, ये श्रील प्रभुपाद के रूम्स हैं। तो मैं कहानी यहाँ शुरू करूँ कि यहाँ शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी जब संन्यास लिया उन्होंने, तब उनकी उम्र कुछ 55 साल की थी, फिर वो वृंदावन आए, और वृंदावन के जमुना किनारे में एक मंदिर है राधा वंशी गोपाल, वहाँ पर वो रहे। बंद है क्या वो? तो राधा वृंदावन चंद वंशी गोपाल मंदिर में रहे, और उन्हें भगवत गीता का अनुवाद किया वहाँ पर बैठ के। जब वो वहाँ पर उन्होंने पूरा किया काम, तो यहाँ इस मंदिर के गोस्वामियों ने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे मंदिर में आके रहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी वैसे मशहूर संत थे और एकांत में रहकर अपना सेवा कर रहे थे। तो फिर निर्मल चंद्र गोस्वामी नाम के गोस्वामी अभी भी हैं वो, उनके पिताजी उस समय थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया बड़े प्रेम से कि हमारे मंदिर में आइए। कुछ 5 रुपये का जो रेंट था महीने का, 2 रूम उनको दिए और उनको निमंत्रण दिया, फिर वहाँ पर आए हो। फिर यहाँ पर रहकर चलो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम जो है ना, 12 स्कंद का पूरा ग्रंथ है वो, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज से बात कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत अंतिम पुराण है वो शास्त्रों में से, उसके जो 12 स्कंद है उसमें से पहले स्कंद का 3 खंड में उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया, वो इस जगह बैठ के किया, ये कमरे में। और वो कमरा जो है वो उनका किचन था, और वो कमरे के आगे अभी समाधि बन रही है रूप गोस्वामी की, वो भी इस मंदिर का एक महत्वपूर्ण भाग है, रूप गोस्वामी की समाधि और रूप गोस्वामी का भजन कुटीर। तो इस मंदिर में बैठकर वो अपने हाथ से भोजन बनाते थे, कभी मंदिर का महाप्रसाद भी खाते थे, कभी अपने हाथ से बनाते थे, और वहाँ पर रूप गोस्वामी की खिड़की को देखते हुए, समाधि को देखते हुए प्रसाद ग्रहण करते थे, और यहाँ पर बैठकर दिन भर लेखन करते थे। तो कभी कभी गोस्वामी मंदिर से थे, पुजारी थे, वो दोपहर का भोज लंच यहाँ पर आके रखते थे दरवाजे के बाहर, वो रात तक ऐसे ही यहाँ रहता था, क्योंकि दिन भर वो लिखते थे, उनको एकदम मग्न होकर लिखते थे। और फिर जब भी बाहर आते थे अपना काम बंद करके, तो देखते थे दोपहर की प्लेट भारी पड़ी, फिर उसको पाते थे। उसके बाद मंदिर बंद होता था 9 बजे, तो फिर वो अकेले बाहर निकलते थे और मंदिर की झाड़ू सफाई करते थे, समाधि की तरफ झाड़ू सफाई करते थे, मंदिर को झाड़ू करते। और कई बार वो गोस्वामी ने कहा है कि उनको आंखों में आंसू लेकर वो झाड़ू सफाई करते थे इस मंदिर की। तो ये मंदिर जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने जो लिखा है उनको ना गारंटी नहीं था कि वो बहुत साल जिएंगे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी उम्र हो चुकी थी, उनको पता नहीं था कितने साल जिएंगे। तो उन्होंने उनको जो भी लिखना था वो उस पहले 3 खंड में उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, इसलिए मुझे जो भी संदेश देना है लोगों को ये 3 खंड के माध्यम से मैंने पूरा दे दिया है। और वो 3 खंड खाली प्रथम स्कंद पूरा हुआ, वो लेकर वो दिल्ली गए, दिल्ली से उन्होंने 3 किताबों को छापा, और उसके बाद में उसको लेकर वो कलकत्ता गए, बम्बई गए, और फिर वो 3 खंड के कई कापी बनाए, कई बॉक्स बनवाए, और फिर जलदूत नाम के बोट में बैठ के वहाँ से अमेरिका चले गए। तो उन्होंने लिखा है कि ये जो मैंने लेखन किया है ये मेरे हृदय का जो कृष्ण भक्ति का आनंद है उसका ये प्रकटीकरण है, मतलब ये मेरा हृदय का प्रेम जो है कृष्ण के लिए वो इस तात्पर्य के माध्यम से प्रकट हुआ है। ही सेज इन इंग्लिश दैट दीज आर माई स्पिरिचुअल एक्सटेसीज, मेरा आध्यात्मिक आनंद का ये अनुभव है सब, जो किताब के रूप में प्रकट हो गया आपके लिए। तो ये दोनों रूम्स ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जब ये रूम्स में बैठकर प्रभुपाद जी ने लेखन किया था तो कोई इस्कॉन नहीं था उस समय, कोई मंदिर नहीं था, कोई शिष्य नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, अकेले प्रभुपाद जी थे। लेकिन पूरे इस्कॉन की स्थापना का जो योजना है वो यहाँ पर बैठ कर किया गया है, उसका जो मास्टर प्लान है वो सब यहाँ पर बैठ के प्रभुपाद जी ने चिंतन किया उसका। और जब उनके द्वारा वो तीन खंड पूरे हो गए तो प्रभुपाद जी स्वयं बताते हैं कि उनको इस रूम में बैठे हुए खिड़की से देखते हुए रूप गोस्वामी का दर्शन हुआ। और रूप गोस्वामी तब समय उस समय अपने सभी साथी आचार्यों के साथ प्रकट हुए, बहुत सारे लोग आचार्य थे जो जब गुजर चुके थे वो सब लोग यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने प्रभुपाद को आदेश दिया कि अभी आप जाओ, अभी आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, हमारी पूरी कृपा पूरी आशीर्वाद आपके साथ में है और आप विदेश में जाओ, अपने गुरुजी की आज्ञा पूरी करो। उनके गुरुजी भी प्रकट हुए उनके सामने, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी के गुरुजी, उनके आगे गुरुजी और स्वयं रूप गोस्वामी, छह गोस्वामी, बाकी तीन गोस्वामी, फिर श्री कृष्ण, सब लोग प्रकट हो गए। तो इसके बाद प्रभुपाद जी फिर चले गए। तो ऐसा कहते हैं ना कि जिस जगह पर चिंतन होता है किसी महान वस्तु का, वो महान वस्तु जितनी महान है उतना भी चिंतन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चिंतन नहीं होता तो महान वस्तु प्रकट कैसी होती है ना। आपने कभी बैठकर चिंतन किया होगा कि मुझे बीएससी करना है, इसलिए आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कभी ना कभी मन में चिंतन किया होगा कि मुझे ये करना है। उस आगे भी आप कुछ योजना बनाएंगे, पहले चिंतन करेंगे उसका, फिर योजना प्रकट होगी, फिर आगे वो घटते हुए नजर आएगा। तो ये मंदिर, इसमें पीछे अभी समाधियाँ बन रही है और रूप गोस्वामी के भजन कुटी भी पीछे है। तो रूप गोस्वामी का मंदिर तो राधा गोविंद जी है एक्चुअली, लेकिन राधा गोविंद जी का मंदिर जब बनने के लिए गया तो उनकी बैठने की जगह थी वो भी कंस्ट्रक्शन में गई, तो वो इस मंदिर में आए। और ये मंदिर जीव गोस्वामी का है और जीव गोस्वामी जो है वो रूप गोस्वामी के भतीजे हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये दोनों भाई भाई हैं सगे। उनका तीसरा भी एक भाई था, वो गृहस्थ था, उसका नाम था अनुपम। तो अनुपम का बेटा जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी का ये जो विग्रह है राधा दामोदर जी का, ये रूप गोस्वामी यहाँ पर भजन करने के लिए आए क्योंकि उनका मंदिर पे वहाँ पर काम चल रहा था। तो यहाँ पर रहते हुए उनको राधा रानी ने स्वप्न दिया और स्वप्न में मूर्ति कैसे बनवाना है वो सिखाया। उनके आदेश के अनुसार रूप गोस्वामी ने अपने हाथ से ये मूर्ति बनवाई दामोदर जी की और जीव गोस्वामी को गिफ्ट में दे दी। राधा दामोदर स्वयं राधा रानी के निर्देश में बने हुए, रूप गोस्वामी के हाथों से बने हुए ये दिव्य विग्रह दामोदर जी, और बाजू में ललिता जी का विग्रह भी विराजमान किया। वो जो विग्रह है कृष्णदास कविराज का, उनका भी वृंदावन में पास में मंदिर था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सब मंदिर फाइनेंशियल लॉस में चले गए। तो आचार्य चले गए, अपने पधार गए वो, तो धन संपत्ति का कमी हो गई, मंदिर का पूजन करना संभालना मुश्किल होने लगा। तो जीव गोस्वामी उस समय प्रमुख थे संप्रदाय के, उनके समय पर, उनके कुछ समय बाद जीव गोस्वामी के बाद पहले जो रूप गोस्वामी थे वो चले गए, सनातन गोस्वामी अंतर्धान हो गए, तो जीव गोस्वामी सबके इंचार्ज बन गए। तो उन्होंने इन सबका विग्रहों का, आचार्यों के विग्रह का देखभाल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सब विग्रह इकट्ठा किए, इसलिए इस मंदिर में सारे विग्रह एक जगह पर हैं। इनका हर एक का अलग अलग मंदिर था, लेकिन ये फाइनेंशियल दृष्टि से, सोशल दृष्टि से देखा जाए तो इसको सब एकत्र किया गया। और लास्ट में बताया ना भूगर्भ गोस्वामी, वो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दो गोस्वामी थे, वो सबसे पहले वृंदावन में आए थे। तो पूरा वृंदावन जंगल था और वहाँ पर वो भगवान को पुकारते, भजन करते, घूमते थे जंगल में। तो उनका विग्रह जो छैल चिकन जी का है, इस तरह से प्रभुपाद के जीवन में और हमारे इस्कॉन संस्था के जीवन में ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ये जगह पे एक और जगह बनने वाली है जिसको कहते हैं कि वहाँ पर वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी गोस्वामी एकत्र होकर चर्चा करते थे कि कैसे आगे लोगों को बचाना है, कैसे ज्ञान का प्रसार करना है। तो वो यहाँ आकर बैठते थे, मीटिंग करते थे, उसके पहले एक जगह पांव धोते थे। तो पांव धोने की जगह भी है जहाँ पर वो पांव धोकर उनके पांव का जल वहाँ इकट्ठा होता था, फिर वो आकर बैठ के मीटिंग करते थे। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का जीवनी दिया है, आप देख सकते हैं बचपन से उनको प्रभुपाद जी को परवरिश मिली भक्ति की। वो अपने पिताजी के मंगल आरती की घंटी को सुनकर जगते थे और बिस्तर में बैठकर पूरी मंगल आरती देखते थे। वो बिस्तर में सोते सोते जग कर। उसके बाद थोड़े बड़े हो गए तो रथ यात्रा करना आरंभ किया, जिद से कि मुझे भी रथ चाहिए। तो घर में रथ यात्रा होती थी उनकी। फिर वहाँ पर एक फोटोग्राफ है, वहाँ पर प्रभुपाद जी के पिताजी साधुओं को खाना खिला रहे हैं। पिताजी प्रभुपाद जी के बड़े भक्त थे, अच्छे कपड़े के व्यापारी थे। वो दोपहर में खाना खाने खिलाते थे तो घर के बाहर जाकर पुकारते थे, कोई भूखा है किसको भोजन करना है। कुछ साधु लोग आते थे भोजन करने के लिए, फिर उनको भोजन करवा के फिर प्रभुपाद जी के पिताजी भोजन करते थे और साधुओं को भोजन पवा के वो कहते थे। प्रभुपाद जी जो अभय छोटे बच्चे थे उनको लेके आते थे, सबको खिला पिला के संतुष्ट करने का बोलते थे कि ये मेरा बालक है अभय, इस पर आप आशीर्वाद दे दो कि ये राधा रानी का और कृष्ण का अच्छा भक्त बने। रोज की कहानी है ये, खाली फेस्टिवल पे नहीं, ये हमारा संस्कृति है। हमारे संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ व्यक्ति को कभी भी भोजन करने के पहले 3 बार पुकारना चाहिए दरवाजे के बाहर जाके, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भोजन करना चाहता है। अगर कोई नहीं आएगा तो फिर जाके भोजन करेगा वो, और कोई आएगा तो पहले उसको भोजन कराएंगे, चाहे वो साधु हो या भिखारी हो या कोई ऐसे ही व्यक्ति हो आने जाने वाला, उसको खिला के फिर गृहस्थ आदमी पर अपना भोजन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, घर में 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, ये आज का नंबर है। पुराने ज़माने में घर में कितने लोग होते थे, 15, 20, 25 लोग होते थे। सब भाई, सब भाई की बीवियाँ, सब भाई के भी सबके बच्चे, सब साथ में रहा करते थे, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, 10-20 लोग तो हुआ ही करते थे। लेकिन हमेशा 5-10 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनता था नियम से। कोई अतिथि आएगा अचानक, कोई बुलाएंगे तो 4 लोग आ जाएंगे। इतनी समृद्धि थी, गरीब के घर में भी दिल बड़ा था बहुत। अभी तो वो लोग गिनते हैं, अरे एक एप्पल खिलाया तो वो 10 रुपये का एप्पल चला गया, अरे केला ले तो 60 रुपये डजन हो गया, ऐसा गिनते हैं हर चीज़ को। किसी को बुलाते नहीं घर पे, कैलकुलेशन करते रहते हैं। गांव में कैसे रहता है, इतने पेड़ लगे हैं, इतने पेड़ पे फल लगे हुए हैं, ले जाओ, वैसे ही वो गिर के सड़ जाएंगे, ले जाओ, पपीता है, केला है, सब सब्जी है, ले लो, कोई देने में कंजूसी नहीं है, ना बनाने में ना खिलाने में, उदार हृदय था लोगों का। तो जितने हम गांव में जाएंगे उतने हम उदार हृदय बनेंगे, क्योंकि तो प्रकृति हमको दे रही है, हम लोगों को दे रहे हैं। शहर में प्रकृति ख़त्म, खाली कंक्रीट जंगल, सब कुछ खरीद के लाना पड़ता है, केला से लेके सब्जी से लेके सब कुछ। तो दोनों के लिए भी, लोगों को देने के लिए भी संकोच है, क्योंकि इतना महंगा सब बजट में बैठता नहीं है। इसलिए घर में मेहमान नहीं आते हैं, मेहमान को हम बुलाते नहीं हैं, क्योंकि गणित करते रहते हैं, मेहमान को बुलाएंगे तो इतना खर्चा होगा। बाहर जाके कैसे बुलाएंगे, कोई भूखा है क्या, भूखा है क्या, पूरे 50 लोग आ जाएंगे, हैं, कोई कमी नहीं है, तो वो भी बंद हो गया। देखिए हमारी संस्कृति क्या थी, नेचुरल एकदम, गरीब से गरीब आदमी अमीर था एक्चुअली, उसके पास बहुत सारा संपत्ति था, मतलब खेती है, धान्य आ रहा है, फल फूल अपने आप उग रहे हैं, पेड़ अभी एक एक पेड़ अभी सैकड़ों फल देगा, कितना आदमी खा सकता है अकेला घर में बैठ के, सबको दे देगा वो। जैसा नारियल है, नारियल के इतने इतने नारियल आ जाएंगे तो अकेला कितना नारियल खाएगा, वो दे देगा लोगों को। अभी भी आते हैं हम डॉक्टर संख्या के घर में जाते हैं ना गाँव में, यहाँ पर हमने पहले कैंप शुरू किया था सबसे पहले, उसकी मम्मी खेत में जाएगी और ऐसा दिल में जो आएगा ऐसा सब्जी उखाड़ेगी, दे देगी हमको, ले जाओ, ये तुझा घर है, तुझा घर ही क्यों था, ए थैली भर के दूधी है, भोपड़ा है, उसके अंदर तो गवारी है, उसके अंदर भिंडी है, उसके अंदर कुछ फल है, उसके अंदर नींबू है। वो नींबू का झाड़ है ना, जो हम लोग अभी बच्चे थे उधर MBBS करके कैंप शुरू किया, वो नींबू का पेड़ अभी भी है उधर, और अभी भी उस पेड़ पे सैकड़ों नींबू लगे हुए हैं। वो पीले नहीं होते, वो हरे रहते हैं, इतना रस है उसके अंदर, इतना स्वाद है उसके अंदर, वैसे ही अभी भी दे रहे हो। कितने साल पेड़ का लाइफ हो गया, वो 30 साल से तो हम देख रहे हैं उसके अंदर। हर समय वो मम्मी जाएगी उसके, वो 50 लींबू तोड़ेगी, 25 इसको 25 उसको देगी, खेत में जाके सब्जी लेके आएगी, पूछेगी क्या चाहिए आपको, क्या अच्छा लगेगा, मैंने क्या क्या है खेत में आज, तो फिर वो लोग के तोड़ के देगी। उसमें क्या गिनती नहीं है कि अरे मैंने इतना मेहनत किया, इतना बीज डाला है, इतना मेहनत किया है, ये फ्री में लेके जा रहे हैं मेहमान के रूप में, ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है उसके अंदर। तो वो कल्चर प्रभुपाद के घर पे था, आज से केवल 100 साल पहले की बात, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, 100-150 साल पहले की बात होगी। तो ऐसे प्रभुपाद जी बड़े हो गए इस कल्चर में, फिर गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए, विदेशी ब्रिटिश लोगों को निकालने में। उस समय उनका गुरुजी से मुलाकात हुआ, उनका कॉलेज का एक फ्रेंड था, वो बोल रहे थे कि कोई साधु आए हैं मिलने को चलना चाहिए। तो बोलते अभय बोलते कि अरे हमारे बचपन में तो बहुत साधु ऐसे आते थे, बहुत लोग चीटर भी थे, बहुत लोग सही भी थे, कोई गलत भी थे, मुझे नहीं इंटरेस्ट उनको, मैं सब साधुओं को बचपन से देखते आ रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं ये अलग है, ये अलग साधु है, कोई ऑर्डिनरी साधु नहीं है, ये डिफरेंट साधु है, मतलब होंगे, मेरे को नहीं आना है, मेरे को टाइम नहीं है। तो फ्रेंड ने बहुत जिद किया, फिर फ्रेंड खींच के लेके गए उनको, तो किसी बिल्डिंग के घर के छत के ऊपर ये बैठ के प्रवचन दे रहे थे कुछ लोगों को। तो वहाँ पर रिवाज था, संत को देखते ही कोई भी व्यक्ति प्रणाम करता है, ये हमारा संस्कृति है कि जो भी सैफरन कपड़े पहनकर आता है, वो चाहे ढोंगी हो या सही साधु हो, लेकिन वस्त्र ऐसा पहन के आए तो हम लोग प्रणाम करते हैं उसको, ये हमारा संस्कृति है, उनका नहीं होगा, हमारा है। तो अभय ने उनको प्रणाम किया, तो प्रणाम करके, अभी आप प्रणाम किया समझो, प्रणाम करने के सर उठाने के पहले ही आदेश दे दिया उनको कि आप पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी जानते हो, क्यों ना आप भक्ति का ये संदेश जो है वो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले देश में जाकर उनको दे दो। तो उनको लगा रही ना जान ना पहचान, इतना बड़ा आदेश दे दिया, कोई कनेक्शन ही नहीं हमारा तुम्हारा, आपको क्या अधिकार बनते हैं हमको आदेश देने का, वो भी लाइफ लॉन्ग आदेश, इतना बड़ा आदेश, पूरे विदेश में जाओ और ये धर्म का प्रचार करो, धूप लग रही तो आगे आ जाओ थोड़ा। तो फिर उन्होंने, प्रभुपाद जी ने, उन्होंने ना थोड़ा वाद विवाद किया उनके साथ में, डिस्कशन किया, उन्होंने कहा कैसे हम विदेश में जा सकते हैं, हमारा देश स्वतंत्र स्वयं परतंत्र है, हमारा देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है, ब्रिटिशों के झमेले में फंसा हुआ है, उसको मुक्त करना पहला काम है, गांधी जी वो काम कर रहे हैं, मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरु जी कहते हैं प्रभुपाद जी को, अरे अंग्रेजों का जमाना चल रहा है फिर भी लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, बीमार हो रहे हैं, बुढ़ापा हो रहा है, आप लोग राज्य करोगे, आपका राज्य आएगा तो भी लोग जन्म लेंगे, बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, एक दिन मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेन प्रॉब्लम गवर्नमेंट किसकी है ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम जन्म मृत्यु है, वो ब्रिटिशों के राज में भी चालू है, आपके राज में चालू रहेगा, तो जब तक ब्रिटिशों का राज ना जाएगा और तुम्हारा राज आएगा तब तक ये काम रुक नहीं सकता है लोगों को ज्ञान देने का, क्योंकि ब्रिटिशों के राज में पहले मुसलमानों का राज था, तभी भी लोग मर रहे थे, बाद में ब्रिटिशों का राज आया तभी मर रहे हैं, और आप आओगे तभी मरेंगे, तो लोगों को मृत्यु प्राप्त होती है, ये सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए मृत्यु से बचाने का जो काम है प्रचार, वो गवर्नमेंट चेंज होने तक रुकना मुमकिन नहीं है। तो प्रभुपाद जी फिर समझ गए कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी अभयचरण जो थे वो बचपन से ना बहुत तेज थे, और कॉलेज में भी बहुत तेज थे, डिबेट में और लीडरशिप में और बहुत सारे काम में बहुत आगे रहते थे हमेशा, तो कभी भी किसी डिबेट में परास्त नहीं हुए वो। देखिए वो लिखते अपने चरित्र में कि मुझे गुरु महाराज ने परास्त कर दिया डिबेट में, मुझे बड़ी खुशी उस बात की कि मुझे सही समय पर उन्होंने परास्त किया और जीवन का उद्देश्य बता दिया। उसी समय उन्होंने हृदय में उस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार किया कि ये मेरे गुरु हैं, लेकिन तभी विद्यार्थी थे, 1922 की बात है वो, फिर 1933 में 13-11 साल के बाद जो शादी हुई उनकी, उनके बच्चे हुए, 33 में उनका दीक्षा हुआ, एक्चुअल फॉर्मल नाम मंत्र दीक्षा यज्ञ के साथ दिया गया, उनका नाम अभय चरणारविंद दास रखा गया। फिर उनके और बच्चे हुए, उनका बंगाल केमिकल में काम करते थे, वो नौकरी करते थे, फार्मासिस्ट थे स्वयं, उनका ड्रग्स का दवाई का बिजनेस था उनका। तो 37 में उनके गुरुजी चले गए, पधार गए, उनका कुछ समय उनका संपर्क हुआ, ज़्यादा नहीं संपर्क हुआ लेकिन 2-4 बार अच्छी मुलाकात हुई। एक बार मुलाकात हुई राधाकुंड किनारे, तो उन्होंने कहा कि समय मिलेगा, पैसा आएगा तो आप किताब छापना, ये जो नॉलेज है इस किताब रूप में आप उसको प्रकाशित करना। और 37 में पधार गए, पधारने के पहले उनका ऑफिस एक बार खत आया उनको, कब जा रहे हो विदेश में। तो जो पहली बार उन्होंने कहा था स्पॉन्टेनियसली देख के, वो उन्होंने कंटिन्यूसली उनको बार बार वही आज्ञा दिया, ऐसा नहीं कि वो आज्ञा ऐसे ही दे दिया ऐसे ही मन में आए तो नहीं, वो कंसिस्टेंटली उनको बार बार याद दिला रहे, मरने के पहले भी उन्होंने खत देखा उनको, जब गुजर गए उसके बाद भी कई बार स्वप्नों में आए वो, उन्होंने रिमाइंडर दिया उनको, और हर बार अभयचरण के मन में एक प्रश्न था कि अरे मैं तो अभी गृहस्थ हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मेरा बिजनेस है, ड्यूटीज़ है मेरे, बहुत सारे कर्तव्य है, कभी पूरा करूँगा सब, कैसे जाऊँगा मैं, यथावकाश सारे कर्तव्य पूरे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, और वे घर छोड़ के चले गए, फिर सन्यास लिया उन्होंने, और सन्यास लेके फिर वृंदावन आए, फिर राधा वंशी गोपाल मंदिर से ये मंदिर में आए, और फाइनली रूप गोस्वामी प्रकट हुए, उन्होंने आदेश दिया उनको, और वो जो आदेश 1922 में दिया था उसी को पूरा करने के लिए 1965 में यहाँ से चले गए। बीच में उन्होंने एक पत्रिका शुरू किया गृहस्थ जीवन में, बैक टू गॉड हेड, वो दिल्ली में अकेले खड़े धूप धूप में रहकर उसको लोगों को बेचते थे, मैसेज ड्यूरिंग वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि कैसे हम लोग झगड़ रहे हैं, जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जीवन के उद्देश्य को भूल रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, खून खराबा कर रहे हैं, लेकिन जीवन के उद्देश्य को भूल कर द्वेष करके झगड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे उनके नए नए पूरा अभी कंपाइल किया गया है पूरे मैगजीन सब, और 65 में अमेरिका में गए। फिर आगे अब देखते हैं टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क, जहाँ पर मैं जा चुका हूँ न्यूयॉर्क में, वो पार्क में सब लोग नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, सेक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं वो पार्क में, बहुत बेकार पार्क है, न्यूयॉर्क का मेन पार्क है वो। उसके बीच में एक पेड़ है, उसके नीचे वो बैठ गए, एक डब्बा लिया, डब्बा अपना डब्बा सुना अपना गवाचा पीटा सा वगैरह सा, वो डब्बा लेके उन्होंने बजाना शुरू किया आंख बंद करके अकेले, और कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए, वो आँख बंद करके बहुत देर तक 45 मिनट तक कीर्तन करते रहे, आँख खुला ही नहीं उन्होंने। जब आँख खुला तो देखा कि 30-40 लोग इकट्ठा हो गए, और देख रहे सब नाच रहे हैं, यंग लड़के लड़की लंबे में बाल ऐसे, हाथ में कुछ लिया ऐसे। तो उन्होंने कीर्तन बंद किया और प्रवचन दिया, सब लोगों ने सुना प्रवचन, फिर रोज़ वहाँ बैठने लगे, रोज लोग इकट्ठा होने लगे, रोज कीर्तन करने लगे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस ट्री को नाम दिया हरे कृष्णा ट्री, उधर एक बड़ा बोर्ड लगाया है कि यहाँ पर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी एक ज़माने में बैठकर कीर्तन किया करते थे, ऐसा पूरा एक प्लाक लगा दिया है, ग्रीन बोर्ड है गवर्नमेंट का, साइंड बाय मेयर महापौर ऑफ न्यूयॉर्क, और वो इतना पवित्र जगह है, सब जगह पे ऐसा बैठे हैं लड़की लड़कियाँ, ऐसे बाल बाल अजीब तरह के लोग नशा कर रहे हैं, और बीच में एक पेड़ है बहुत सात्विक लगता है वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ पर उसके आसपास बैठकर उन्होंने कीर्तन किया था, उसका फोटो भी वहाँ पर लगाया है। फिर उन्होंने एक और एक जगह भाड़े पे लिया, उसका नाम है मैचलेस गिफ्ट, 26 सेकेंड एवेन्यू स्टोर फ्रंट, वो भाड़े पे लिया, वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया, और बोर्ड लगाया बाहर भगवद गीता क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ऐसा कुछ नाम लेके टाइमिंग देके लगाया, वो मार्केट में जाके फिर लोगों को इन्फॉर्म करते थे, थोड़ी भिक्षा करते थे, और सब्जी वगैरह लाके कुछ बनाते थे भोजन अपने हाथ से। उम्र कितनी है उनकी अभी? 71 ईयर्स। इतने उम्र में अपने हाथ से बना दे खाना, फिर विदेशी बच्चे जंग यंग आपके जैसे आते थे और कथा सुनते थे उनकी, कुछ समझ में आता नहीं था उनको, क्योंकि एक तो ओल्ड मैन, ऊपर से बंगाली एक्सेंट, ऊपर से इंग्लिश बोल रहे हैं, फिर इसको कथा वो बोलते थे, उसके बाद में अंदर जाकर सबकी प्लेट बनाकर सबको देते थे, फिर बच्चे लोग खाते थे, वहाँ कोई कल्चर नहीं है जितना दिया है पूरा साफ करके खाना चाहिए, ये कृष्ण का प्रसाद है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी को पता ही नहीं क्या है ये, तो आधा खाया आधा छोड़ दिया, ऐसे रख के चले जाते थे, उन सबको गेट तक रोड तक छोड़ के आते थे, फिर वापस आकर सबके प्लेट इकट्ठा करते थे, सबका जूठा साफ करते थे, प्लेट भी धोते थे, अंदर जाके बड़ा बर्तन धोते थे, और फिर अगले दिन की तैयारी करते थे। अगले दिन भी वही लोग आते, यंगस्टर आते थे, खाना खाते चले जाते थे। फिर कुछ दिन बाद एक ने पूछा, महाराज जी थोड़ी हेल्प करें क्या आपको? बोला करो। फिर कुछ ने बोला कि खाना बनाने के लिए आ जाए आपके लिए, हेल्प करने के लिए, आ जाओ। बाद में एक ने कहा कि ये रह जाऊँ क्या मैं आपके साथ ही, आपको हेल्प करूँगा, रह जाओ। फिर प्रभुपाद ने अपने हाथ से उनके बाल कटवाए, सब शेंडी रखी, अच्छी तिलक लगाया, और वो प्रथम भक्त का नाम था कीर्तनानंद, वो किचन में ही उसका ट्रेनिंग हुआ, तो प्रेम से बोलते थे किचनानंद, कि ये व्यक्ति किचन में बहुत आनंद लेता है सेवा करने में। उसका नाम था कीथ, कीथ नाम था उसका। सबसे पहले आचार्य बने इस्कॉन में प्रभुपाद के शिष्य के रूप में, कीर्तनानंद स्वामी भक्तिपाद, लेकिन शुरुआत उनकी ऐसे हुई। और कहते सब लोग ड्रग लेते थे, एवरीबडी, सबको प्रभुपाद ने ड्रग से छुड़वाया। नशा, व्यभिचार, जुआ, अकेले रहते थे, किसी के साथ होते थे, कुछ भी करते थे, एनीथिंग, फ्री लाइफ। एनीबडी अबाउ 30 इयर्स डोंट बिलीव इन देम, ऐसा उनका एक ब्रीद था। जिसकी भी उम्र 30 साल के ऊपर होती है उन पर विश्वास मत रखना, वो आपके दुश्मन है। तो माता पिता तो 30 साल के ऊपर ही हो गए ना, तो सब लोग माता पिता दुश्मन, घर छोड़ के अपने आप रह रहे हैं जंगल में, किधर तो भी नशा कर रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जीवन में कोई रास्ता नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनका नाम क्या था? हिप्पी। उन लोग को हिप्पी कहते थे, खास करके लंबे में बाल रखना और नशा करना, जंगल में रहना। ऐसा कि हमारे बचपन में एक मोमेंट था, हिप्पी मोमेंट। तो सारे हिप्पीज को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। तो एक बार एक रिपोर्टर आया, बोले भारत में तो साधु आते हैं, इंडिया में, इंडिया से आते हैं, वो सब लोग कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं, हर एक का एक अपना अपना चमत्कार है, एक एक विशेष चमत्कार के लिए वो फेमस है। आपका चमत्कार क्या है? आपका, आप भी मुंबई से, इंडिया से आए हो, तो उन्होंने ऐसे उंगली दिखाई, जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे कुछ लड़कियां भक्त बन के साड़ी वाड़ी पहन के, अच्छी तरह से पल्लू लेके, तिलक लगा के, माला लेके, आप लड़कियां बैठी हैं, वहाँ पर कुछ लड़के बैठे हैं, सर मुंडवा के, चोटी रखे, हाथ में माला, तिलक लेकर जप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको देखो, इनको देखो, ये सब लोग नशा करने वाले थे, सब लोग नशा करते थे, जुआ खेलते थे, व्यभिचार करते थे, मांसाहार करते थे, घर छोड़कर अकेला पागल की तरह रहते थे, लंबे लंबे बाल रखकर नाचते थे रास्ते पर नशा करके। आज ये सब लोग जो है वैष्णव नंबर वन फर्स्ट क्लास के बन गए हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। यही मेरा चमत्कार है। बोले कुछ साधु लोग आकाश में से घड़ी निकाल के देते आपको, ऐसा लो भाई घड़ी लो। फिर कोई विभूति निकाल के देंगे, बोले विभूति पानी डाल के पियो, सब बीमारी दूर हो जाएगी आपकी। ऐसे कोई सोना निकाल के दे रहा है हवा में से, बोला ऐसे चमत्कार का वैल्यू क्या है? वो सोना दे के आपका जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन आया हुआ है, ये पाप की जिंदगी से मुक्त होकर अभी पुण्य की जिंदगी जी रहे हैं, भगवान के रास्ते पर ही। इतने पतित होने पर भी आज एक श्रेष्ठ भक्त बन गए। बताइए, उनको पूछा आपके दृष्टि से बढ़िया चमत्कार कौन सा है, तो उन्हें कहा हृदय परिवर्तन इज द बिगेस्ट चमत्कार, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। आपको मैं हवा में से सोना निकल के दूंगा, आप मुझे 10 बार प्रणाम करोगे, मैं बोलूँगा आशीर्वाद है तुम्हें, क्या फ़र्क पड़ता है उसके बाद में? वही नशा करते रहेंगे आप, वही जुआ खेलते रहेंगे, मांस खाते रहेंगे, वही पाप करते रहेंगे, फिर वह दोबारा आएंगे, फिर दोबारा कुछ चाहते हो ये लो विभूति ले लो, उसको पानी डाल के पियो, फिर जाके घर में टीवी देखेंगे आप, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? व्हाट इज़ द यूज़? प्रभुपाद जी ने सबको ये दिखाया कि हृदय का परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। अगर वो नहीं है तो वस्त्र बदले करने से कुछ फायदा नहीं है। पैंट शर्ट से धोती कुर्ता पहन लिया, लेकिन हृदय वैसा का वैसा ही है, पाप में अभी तक घूम रहा है, पाप के विचारों में घूम रहा है। तो हमें भी देखना यही है कि हम केवल बाहरी रूप से बदले नहीं। अब मैंने तिलक लगाना, पहले लगाता नहीं था, अभी तिलक लगाना चालू कर दिया है। पहले एक ही जगह 12 जगह लगाता हूँ, पहले पैंट शर्ट पहनता, अभी मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, पहले ये नहीं था, अभी ये आ गया। ऐसे बाहरी चेंज हो गए सारे, बहुत सारे, वो भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाहर चेंज हो गया, लेकिन अंदर चेंज नहीं हुआ, तो फिर भी हम लोग वहीं के वहीं रह गए, है ना। एक मिट्टी के पुतले को आपने अच्छा कपड़ा पहन दिया, लेकिन मिट्टी का पुतला तो मिट्टी का पुतला ही रह गया, उस पर जान नहीं आ गई ना। उसी तरह से हमारा अंतर्बाह्य परिवर्तन होना ज़रूरी है, तब जाकर हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो अंतर्बाह्य परिवर्तन लोगों का कैसे करना है, इसकी चर्चा इस मंदिर में हुआ करती थी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े दिग्गज आचार्य थे, आज से 500 साल पहले की बात है, वो इस भूमि पर, इस जमीन पर बैठकर, वहाँ तमाल के वृक्ष थे, उसके तले बैठकर वो चर्चा करते थे कैसे भटके हुए जीवों को बचाना है, जो लोग पाप में फंसे हुए हैं उनको बचाना कैसे है। यहाँ पर प्रभुपाद जी, मतलब वो आचार्य लोग जो है वो चर्चा करते थे। उसके बाद यहीं बैठकर प्रभुपाद जी ने वो संकल्प किया, वो चिंतन किया कि मुझे क्या करना है। उनके आदेश के अनुसार सबके आचार्यों के विग्रह यहाँ पर थे, उनको उन्होंने प्रार्थना किया, उनकी कृपा की याचना किया, यहाँ बैठकर लेखन किया, संन्यस्त वृत्ति और एकाग्र वृत्ति और मग्न वृत्ति से, है ना, एब्सॉर्प्शन। कुछ ना जीवन में कुछ ध्येय होना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं कि ऐसा अगर आपके जीवन में कोई ध्येय नहीं है जिसके लिए आप मरना चाहते हो, आई वॉन्ट टू डाई फॉर दैट मिशन. अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है जिसके लिए आप जान दे सकते हो अपनी, तो वो कहते हैं कि जीने के लिए आपके जीवन में कुछ वर्थ है ही नहीं. अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है जिसके लिए आप अपना जीवन निछावर करना चाहते हो, अगर आपके पास ऐसा कोई मिशन नहीं है जीवन में, तो आपका जीवन व्यर्थ है, ऐसा वो कहते हैं. तो हर एक के जीवन में कोई मिशन होना चाहिए जिसके लिए हम अपना हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल हम लोग अर्पण करना चाहते हैं. आप बोलेंगे अरे हम तो छोटे से विद्यार्थी, हम लोग क्या कर सकते हैं. अब छोटे हो या बड़े हो, हर एक के जीवन में कुछ मिशन होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ. वो लक्ष्य प्राप्त करना केवल मनुष्य के लिए दिया गया है. कुत्ता बिल्ली के जीवन में कोई मिशन नहीं होता, कोई ग्रंथ नहीं होते जो पढ़ते हैं और हमको ये करना है अभी, वो शेर को जाके मारना है, ये हमारे जीवन का मिशन है. हमारे एरिया में शेर आके हमको खा जाता है, हमारा जीवन का मिशन है कि शेर को मारना है. ऐसा कोई मिशन उनके जीवन में होता नहीं है. मिशन केवल मनुष्यों के जीवन में होता है. श्री प्रभुपाद जी ने वो मिशन अपने हाथ में लिया और हमको भी वही मिशन दिया है. हमारा मिशन क्या है, कुछ जानते हैं आप लोग हमारा मिशन क्या है? भक्ति हॉस्पिटल का विथ लव एंड डिवोशन, मॉडर्न साइंटिफिक एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर सर्विस बेस्ड ऑन ट्रू अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल. ये केवल रिपीट करने के लिए नहीं है. ये रोज दोहराते क्यों हैं? रोज याद करने के लिए दोहराते हैं, लेकिन ये आचरण में उतारने के लिए. गरीब लोगों को जो तड़प रहे हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, उनको सस्ते में सस्ता और बेस्ट ट्रीटमेंट, उत्कृष्ट दर्जे का प्राप्त होना चाहिए. ये हमारा मिशन है. लेकिन मिशन पूरा हुआ हमारा कि इतना ही है कि आधा है? क्या लगता है आपको? लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जितना हो सके सस्ते में दे रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी का दे रहे हैं रोग मुक्ति करने के लिए. मिशन पूरा हुआ कि आधा है? तो आधा मिशन क्या है फिर बचा हुआ? ये ट्रीटमेंट देते हुए जो सस्ता भी है और श्रेष्ठ भी है, वो ट्रीटमेंट देते हुए उनको भगवान के साथ भी जोड़ना है. अच्छे होते होते भगवान का उनका संपर्क भी जोड़ देना है. दैट इज द मिशन ऑफ लाइफ. क्योंकि जो आधा मिशन जो है ना, वो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं. बहुत सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत सेवाभावी संस्थाएं हैं, वो भी अपना अपना फ्री कैंप, फ्री सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन भगवान को जोड़ने का काम सब लोग नहीं करते हैं. तो हमको वो भी करना है और साथ में भगवान को जोड़ने का काम भी करना है. क्योंकि जीव का उद्धार तब होगा जब वो जीवन मृत्यु के संघर्ष से मुक्त हो जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम लोग डिलीवर हो गए. नहीं तो फिर क्या हो गया? अच्छे होंगे फिर बीमार पड़ेंगे, खाना खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, फिर भूख लगेगी, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि. तो उद्धार किधर हो गया? उद्धार कुछ नहीं हुआ, बदला कुछ नहीं, खाली जगह बदली. बस अभी इंडिया में थे पहले, बाद में अमेरिका में गए जन्म लेकर. लेकिन जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वो साथ साथ देना है उसके, वो गोली साथ में देना है उसकी, ज्ञान की. तो ये मिशन हर एक व्यक्ति का मिशन है. समझ समझो कि डॉक्टर शानबाग का और रामशरण प्रभु का और डॉक्टर संखे का मिशन है और रघुवाद का मिशन है. कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम तो ऐसे ही विद्यार्थी बनकर आए हैं. हम सबका मिशन है. ये क्या मिशन है? महाप्रभु चैतन्य ने मिशन दिया है हमको. भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार. क्या मिशन है ये? जो व्यक्ति भारत में जन्म लिए हुए हैं उनका ये कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने जीवन का खुद का उद्धार करो, खुद उस रास्ते पर चलो, उसके बाद में करो परोपकार, बाकी लोगों को भी लेके चलो. खुद का जीवन सार्थक करते करते बाकी लोगों को भी साथ में लेके चलो, जितना हो सके. एक दो ले चलो, 50 लेके चलो, 10 लेके चलो, जो भी मिलता है उनको साथ में अच्छे रास्ते पर लेके चलो. पाप के रास्ते से छोड़कर उनको पुण्य के रास्ते पर और भगवान के रास्ते पर लेके चलो. इतनी करुणा थी इनके मन में, इसलिए यहाँ पर रहकर इतना चिंतन किया उन्होंने. और इतनी बूढ़ी अवस्था में इतने 40 दिन तक बोट की यात्रा की. देखो उधर बोट है ना, उधर हॉस्पिटल बना था ना बोट, 50 साल पूरे हो गए उसका आज. अरे हम लोग से कोई यात्रा नहीं करेगा उसके अंदर? अरे क्या बैठने की जगह नहीं उसके अंदर, हवा नहीं जाएगी, उसके अंधकार है पूरा, सामान ही सामान पड़ा हुआ है, कोई यात्री नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं, कोई पानी पानी सब जगह पर है, सी सिकनेस हो रहा है, मोशन सिकनेस हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, तकलीफ हो रही है. अगर हार्ट अटैक नहीं भी आता तभी भी वो जर्नी बहुत बेकार जर्नी था. 40 दिन को यात्रा करता है क्या कोई? मैक्सिमम यहाँ से गोरखपुर 3 दिन का रास्ता है ट्रेन का नेपाल तक. 40 डेज वही पानी 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 पानी, और दो चार लोग बस, और दिल का दर्द ना, सफ़र किया उन्होंने, किस लिए किया? साधु लोग बोलते थे उनको, अरे महाराज जी आप वृंदावन में आए हो, वृंदावन कोई छोड़ के जाता नहीं इस उम्र में, इस उम्र में लोग वृंदावन में आते हैं मरने के लिए, पता नहीं कब मर जाएंगे, इसलिए वो इस उम्र में रिटायर होकर वृंदावन में आ जाते हैं। आप भी आ गए हो 63 के एज पे, वो कहाँ जा रहे हो आप लोग, पागल हो गए क्या आप एक मूर्ख साधु हो, जिस उम्र में यहीं रहना है उस उम्र में आप केवल यहां से बाहर नहीं जा रहे हो, विदेश जा रहे हो पाप की भूमि पर। तो ये सच्चा साधु नहीं है, गलत साधु है, इसको नॉलेज नहीं है। 12 साल में वर्ल्ड में प्रचार करके आए, 108 मंदिर बनाया, हजारों शिष्य बनाए, लाखों किताबें का वितरण किया, सबका जीवन परिवर्तन किया, फिर दोबारा वृंदावन में आए, तब उनका खुद का मंदिर बन गया था, कृष्ण बलराम मंदिर, आपने दर्शन किया ना सब लोगों ने, कृष्ण बलराम मंदिर वो उन्होंने जंगल में बनाया था उस समय, अभी जंगल में बॉम्बे से अधिक रेट हो गया जमीन के, उधर जो जंगल था शेर आते थे उस समय, लोगों ने बोला उनको, अरे महाराज जी यहाँ कौन की जगह ले रहे हो आप, तो जंगल है, कौन आएगा इधर दर्शन करने के लिए, बोला वेट एंड वॉच आज इसमें खड़े रहने की जगह नहीं है, इतना ट्रैफिक हो गया है, टैं टैं टैं, तो खड़े रहने को जगह नहीं होती संडे को, हर रोज मंगल आरती को 500 लोग रहते हैं 4:30 बजे, ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो। तो वो फिर उस मंदिर में गए और भगवान का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया उन्होंने 14 नवंबर 1977 को। तब वो सब साधु आ गए जिन्होंने उनका निंदा किया था कि कैसे साधु आप छोड़ के जा रहे हो, तो बाद में सबने उनका गौरव किया कि ये सही साधु है, सारा सेवा पूरा किया और फिर वृंदावन में आके जो इच्छा था वैसे ही शरीर छोड़ दिया भगवान का नाम लेकर। उनका फिल्म है, आप देखिए उनका फिल्म, ऐसा ना पूरा हड्डी और पसली एक हो गया है पूरा, कोई मांस है ही नहीं शरीर के ऊपर, फिर भी उसके मुंह पे ऐसा एक माइक्रोफोन रखा हुआ है और वो अनुवाद कर रहे हैं भागवतम का, ब्रह्मा ने बछड़े चुराए थे उस लीला का अनुवाद कर रहे हैं, डेथ बेड के ऊपर उसका रिकॉर्डिंग करके उसका अनुवाद छापा है, और तभी उनका देहांत हो गया उसी बेड के ऊपर जो आपने दर्शन किया ना उसके बेड का, उनके बेड का। मतलब मिशन कैसा होना चाहिए, आखिरी सांस तक उन्होंने बोला ना, अब मैं अभी मेरे को बोलने को भी नहीं हो रहा है, अभी आप लोग करो, लेकिन अभी भी उनका आवाज दिखाई पड़ता है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम, ऐसा बोल रहे हो, और वो उनका अनुवाद किताब में छपा हुआ है भागवत में। तो ऐसा मिशन होना चाहिए जो दूसरों के लिए जिए, खुद के लिए नहीं जिए, अनंत लोगों का कल्याण किया उन्होंने, तो इसलिए हम उनके ऋणी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, थैंक यू वेरी मच। अभी अगले मंदिर जाएंगे, हाँ।